بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. لله ما في السماوات وما في الأرض، الله کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑے ہیں، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں. دنیا میں آدمی کسی چیز کا شوق رکھتا ہے اور کسی سے محبت کرتا ہے، تو خوبصورتی کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا عقل اور حکمت کی وجہ سے یا طاقت کی وجہ سے، اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ چیزیں خزانے کے خزانے بھری پڑی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنائی، جب جنتی ایمان والے اور ایمان والیاں جنت کو دیکھیں گے تو بہت عرصے تک، اتنے سال ہر سال تک، وہ صرف اس کو دیکھتے رہیں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ دیکھتے رہیں گے. جیسے کوئی آدمی نئے مکان میں چلا جائے یا بادشاہ کے محل میں چلا جائے تو پہلے تھوڑی دیر تک تو پریشان حیرت زدہ دیکھتا رہتا ہے کیا چیز ہے. اتنی خوبصورت جنت بنائی کہ جنتی اس کو بہت عرصے تک دیکھتے ہی رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو لوگ اتنے سال ہر سال اور بہت مدت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے. اس آدمی کا درجہ جتنا بڑا، اس کو اللہ کا دیدار اتنا نصیب ہوگا. دنیا میں جتنے بھی خوبصورت لوگ آتے ہیں اور آئے ہیں، ہزاروں لاکھوں، یہ سب اللہ کے خزانے سے ان کو خوبصورتی ملتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے خوبصورت اور کتنی طاقت والے اور کتنے بڑے ہوں گے. میرے محترم بزرگوں، ہماری مقدس مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. علم دین سیکھنے کے لیے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بولنے کے لیے تھوڑی دیر کا بیٹھنا بہت خوبیوں والا اور بہت برکات. فرشتوں کی ایک جماعت گھومتی رہتی ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، وہاں سے آسمان تک اوپر تلے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. جو آدمی دین سیکھنے جاتا ہے، فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. جو لوگ اللہ کے واسطے ملے، اللہ کے واسطے واپس گئے، وہ قیامت میں عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت برستی ہے. قرآن شریف میں آیا کہ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے لیے جنت سے پھل آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا کر دی. اس سے مشائخ فرماتے ہیں کہ کوئی دینی مجلس ہو جس میں لوگ دور دور سے آتے ہوں، تو اس میں پتہ نہیں کس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، کتنے اللہ والے اللہ والیاں موجود ہیں، تو ان کے آدمی دعا مانگے کہ یا اللہ، اتنے لوگ آپ کی محبت میں آئے ہیں، ان کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما دیجیے اور ہماری مشکلات کو بھی دور فرما دیجیے. اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت برستی. ہم سب یہ نیتیں کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. یہاں پر یہ بات سننے کا مقصد کوئی بیان، کوئی فلسفہ، تاریخ، کوئی سوال جواب نہیں ہے، اور کوئی صرف دل دماغ کی چاشنی نہیں ہے کہ کوئی لطیفہ سن لیا یا واقعہ سن لیا. شیخ فرماتے ہیں کہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں اور غفلت ہے اور جہالت ہے، یہ دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ایک راستہ، مکمل تعلق ہو جائے، اور جو چیزیں اس میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ہم سوچیں اور اس رکاوٹ کو دور کریں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری توبہ قبول ہو جائے، شیطان اور نفس کے بہکانے سے ہم بچ جائیں، ہماری سستی دور ہو جائے، سنت طریقے زندگی میں آ جائیں. جو جتنی نیت کرے گا اور شوق رکھے گا، اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے نیتیں بار بار بتائی جاتی، صراط مستقیم پر ہماری زندگی آ جائے. ایک آدمی ہے اور جنت کے راستے میں دوڑا جا رہا ہے، سیدھے سیدھے بڑی تیزی سے، جیسے کوئی ہائی وے ہے، آدمی اس میں بہت تیز رفتاری سے جا رہا ہے، لیکن ذرا परेशानी हो गई, रास्ता भूल गया, अब एग्जिट लेकर गलियों में आ गया, चक्कर खा रहा है, महीनों गुजर गए, साल गुजर गए, कुछ तरक्की नहीं हो रही। क्या हुआ भाई? एग्जिट लेके वो रास्ता भूल गए थे, कहीं घूम रहे थे शहर में। तो वापस क्या है रास्ता भाई, जल्दी से जो है आदमी ढूंढे कि वो हाईवे किधर से मिलती है भाई, ज़रा बताओ, और जाकर उसमें दौड़ना शुरू कर दे दोबारा जन्नत की तरफ। तो आदमी का ऐसा ही है कि ज़िंदगी भर शैतान से और नफ्स से उसकी कुश्ती रहती है, कभी उसने पटक दिया, कभी आपने काबू पा लिया। और अल्लाह वालों की बातें सुनने और किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ रखने का फ़ायदा ये होता है कि आखिर में आदमी जीत जाता है अल्लाह के फजल से। अल्लाह ताला ऐसा ही हमारे हमारे आपके साथ फरमा दे, हमारी आखिरत में आसान हिसाब हो, मग़फ़रत हो, जन्नतुल फिरदौस में रहना नसीब हो जाए। अब इसमें एक तरीका है कि ईमान यकीन बढ़ाने के लिए लोग जद्दोजहद करते हैं, मुजाहदे करते हैं, दूर दूर सफ़र करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, महीनों गुजारते हैं, और तब जाके ईमान यकीन उनको मिलता है। रास्ता भी है, लोग मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं सुबह शाम। एक रास्ता कमज़ोरों के लिए ये है, हमारे जैसे, वो ये है कि दीन की जो बात हो रही हो उसको इतनी तवज्जो से, ध्यान से, अकीदत से सुने, ये इसी में काम बन जाए। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम दूर दूर नहीं जा सकते, या अल्लाह ज़्यादा वक्त हम नहीं लेकर आए, हम बिल्कुल बेजान हैं, लेकिन इसी में जान डाल दी, तो जिसको जितना शौक़ होगा वो पहुंच जाएगा। इसमें सारा जो है मदार वो शौक़ का है, इसलिए जो है हम खूब शौक़ पैदा करें, अल्लाह की बातें सुनने का शौक़ पैदा करें। जो अच्छी बातें सुने उनको हम कहीं जाकर दोहराएं। जो आदमी, ये मिश्कात शरीफ की हदीस है कि जो बंदा दूसरे को नेक अमल के लिए रहनुमाई करे, उस बताने वाले को भी करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। मन दल्ला अला खैरिन फलहू मिस्लु अजरि फाइलिही। और एक और हदीस शरीफ है मिश्कात शरीफ में, उसका मफहूम है कि सखावत में सबसे बड़े अल्लाह हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दर्जा है और मेरे बाद उस आदमी का दर्जा है जिसने हिदायत का इल्म हासिल किया और उसको फैलाने और दूसरों को पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा आदमी क़यामत में सरदार और हाकिम बनकर आएगा, या ये फरमाया कि अकेला आदमी एक उम्मत बनकर आएगा। हम अपने ख़ानदान वालों को, पास पड़ोस के लोगों को, अपने घर में अच्छी बातें बताएं और अच्छी बातों का मुजाकरा करें। हमारे कहने सुनने से किसी को शौक़ हो गया, बस उसकी ज़िंदगी बन गई और हमारे लिए सदका जारिया शुरू हो गया। अब आज से वो जितना अमल करेंगे उसका सवाब उनको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, इससे अच्छी चीज़ ही नहीं। सबसे पहली बात है कि अल्लाह के खजाने और अल्लाह की बड़ाई हम बयान करें और इसके बारे में सोचें। तो मस्जिद में ही बताया जाता है कि बारिश का एक एक कतरा और बर्फ़ का एक एक टुकड़ा ये अल्लाह के इल्म में है। कहाँ पर गिरेगा, कितना, कितनी बर्फ़, ये अल्लाह के इल्म में है। किस बर्फ़ पर किस आदमी के जूते के निशान पड़ेंगे, ये भी अल्लाह के इल्म में है। और एक आदमी पूरी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ चलकर जाएगा, उसके कदम के निशान कहाँ कहाँ पड़ेंगे, ये भी अल्लाह के इल्म में है, ये पहले से लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह। रोज़ाना जितनी बारिश ज़मीन पर होती है, जितने कतरे गिरते हैं, बिल्कुल उतनी ही मकदार में पानी समुंदरों से उड़कर हवा में चला जाता है। हज़ारों लाखों साल से बारिश हो रही है और समुंदरों से पानी जाकर बादल बनता है, एक कतरा भी गुम नहीं होता। ऐसी नहीं चल रहा है दुनिया के बस चल गया किसी तरीके से, एक कतरा भी गुम नहीं होता। एक कतरा गुम होगा आज तो कल दूसरा गुम हो गया, परसों तीसरा, जापान में गुम हो गया एक कतरा, चौथा जो है ऑस्ट्रेलिया में खतरा गुम हो गया। अब क्या हुआ, 4-5 हज़ार साल के बाद समुंदर सब कुछ खुले। तो अल्लाह के ख़जाने में हर चीज़ मकदार से। एक गिलास पानी आदमी के मुंह में आने में कायनात की इतनी क़ुव्वतें इंसान की खिदमत में हैं, आदमी गौर करे। समुंदर में नमकीन पानी था, हम पी नहीं सकते थे, उसको हवा के ज़रिए बादल में तब्दील किया गया। तो मीठे पानी की फैक्ट्री है बादल, कोई बिल नहीं उसका, कोई फीस नहीं लगती। फिर बादल किसी और मुल्क में होते, वो चलकर आपके शहर में आए, ये एक डिलीवरी सर्विस है, इसकी भी कोई बिल नहीं। उसके बाद बारिश हुई, अब आदमी बाल्टियाँ रखकर पानी जमा कर लेता साल भर के लिए, बहुत मुश्किल होती है। तो उसको बादलों को बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर बरसाया पानी, यहाँ पर है पहाड़ों की चोटियाँ, और उसमें बर्फ़ की शक्ल में महफूज कर लिया। ये रेफ्रिजरेटर है अल्लाह मियाँ के, और इसकी भी कोई फीस नहीं। उसके बाद कहा जाता है कि भाई जाओ पहाड़ों से ले आओ, अब कोई गुम हो गया, घर वाले ढूंढ रहे हैं, पानी लाने गए थे पिछले हफ्ते, अभी तक नहीं आए। उसके बाद समुद्र के, उसके बाद सूरज निकाले, उसको गर्मी का मौसम आया कि भाई पानी ज़रा हल्के हल्के टपक टपक के दरिया नदी नाले बहकर साफ शफाफ पानी आपके घर पे आए। एक गिलास पानी का आने में पूरी कायनात की कुव्वत ने आदमी की खिदमत की, और एक रोटी का टुकड़ा आदमी के मुंह में आने में कायनात की कुव्वतें आदमी की खिदमत में। और कहा यह जा रहा है कि भाई अल्लाह को याद कर लो, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह लो और खा लो। अल्लाह ताला के खजाने और अल्लाह की बातें हम सोचें और उसको पढ़ें। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनका बयान है कि उन्होंने अपनी किताब सही बुखारी में जो हदीसें दर्ज की हैं, हदीस दर्ज करने से पहले उन्होंने गुस्ल किया और दो रिकत नमाज पढ़ी, यानी हर हदीस लिखने से पहले कितनी तैयारी की, हदीस का अदब, हदीस का अदब। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ का दर्स दे रहे थे और पढ़ने के दौरान आपका रंग जर्द हो रहा था, आपके चेहरे में तकलीफ के आसार थे, लेकिन उन्होंने दर्स बंद नहीं किया, क्लास बंद नहीं की और पढ़ाते रहे। जब आप फारिग हुए तो किसी शागिर से फरमाया कि मेरी कमर को देखो, तो उन्होंने कपड़ा हटाकर देखा तो एक बिच्छू ने इमाम साहब को 16 मरतबा डंक मारा था दौरान, लेकिन उन्होंने अपना मशगला इल्मी नहीं छोड़ा। और पूछा गया कि आपने बता क्यों ना दिया, फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए सब्र किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए सब्र किया। लोग उनके घर पर आते कि हम हदीस मुबारक सुनना चाहते हैं, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पहले जाते, गुस्ल फरमाते, खुशबू लगाते, नया लिबास पहनकर वापस आते, एक तख्त बिछाया जाता उस पर बैठकर हदीस शरीफ बयान फरमाते और उसमें खुशबू की धुनी दी जाती। फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की ताज़ीम करूँ। तो भाई ये जो तरीक है सीखने का, इसमें सारा मदार जो है वो अकीदत का है, एहतराम का है। इसको जितनी ज़्यादा अकीदत होगी वो उतना जल्दी पहुँच जाए, चाहे पहले से कुछ भी नहीं आता। और जो ज़्यादा शक शुबे में उसमें रहेगा, कहाँ से आई, किधर से बोला, क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं सीख सकता। अल्फाज सीख लेगा लेकिन ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं। तो इसमें सीखने का सारा मकसद ये है कि आदमी तड़प जाए कि अच्छा ऐसा मांगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं भी ऐसे मांगूंगा। एक दुआ है, देखिए इसमें अरबी याद करना मकसद नहीं है, ये बताने का मकसद ये है कि इस तरह की दुआएँ मांगते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة। الترجمة देखिए और इसको अपनी रोजाना की दुआओं में शामिल कर लीजिए जो भी याद रह जाए। ऐ अल्लाह मैं आपसे मांगता हूँ सबसे अच्छा सवाल और सबसे अच्छी दुआ, यानी पूरी दुनिया में जितने लोग मांग रहे हैं और मांग कर चले गए आजकल, और खाना काबा में मांग रहे हैं और कहाँ कहाँ मांग रहे हैं, रमज़ान में मांग रहे हैं, हज में मांग रहे हैं, हाजी साहबान मांग रहे हैं, लोग रातों को उठकर मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह हम आपसे मांगते हैं सबसे अच्छा सवाल और सबसे अच्छी दुआ और उम्दा से उम्दा कामयाबी और नेक अमल और उम्दा सवाब और उम्दा से उम्दा जिंदगी और अच्छी से अच्छी मौत, सब कुछ मांग लीजिए। और ये बात मांगता हूँ कि आप मुझे साबित कदम रखिए और मेरी नेकियों का पल्ला भारी कर दीजिए और मेरा ईमान मजबूत फरमाइए और मेरा दर्जा बुलंद फरमाइए और मेरी नमाज कबूल फरमाइए और मेरे गुनाह बख्श दीजिए और हम आपसे जन्नत के ऊँचे ऊँचे दर्जे मांगते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं, दुआएं सिखा रहे हैं। एक सहाबी आए कि आपने बहुत सी दुआएं मांगी, हमें कुछ भी याद नहीं रही। तो उनको ये बताया गया कि आप ये मांगिए कि अल्लाह मैं आपसे वो तमाम खैर मांगता हूँ, भलाई जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मांगी हम भी आपसे मांगते हैं, और वो तमाम चीज़ें जिनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी हम भी आपसे पनाह मांगते हैं। हम भी उन चीज़ों की पनाह मांगते हैं, हमें भी दे दें। हज़रत मौलाना हकीम अख्तर साहब ने मज़मून लिखा, अपने वाज में फरमाया कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम मजलिस में जो सुनते हैं हमें कुछ याद ही नहीं रहता, हमारा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, कुछ पल्ले पड़ता नहीं, लिहाजा जाना बेकार। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कुछ भी याद ना रहे तब भी फ़ायदा होता है, जैसे 2-3 दिन पहले हमने क्या खाया था याद नहीं रहता, पिछले हफ्ते क्या खाया था वही नाश्ते में याद नहीं रहता, लेकिन उस ग़िज़ा से जो खून बना वो हमारी रगों में दौड़ रहा है। इस तरह फरमाते हैं कि मजालिस में जो उलूम और मलफूजात जो सुने जो मशायख हमारे हैं बुजुर्गान, अल्लाह उनको बरकत दे, तो चाहे याद रहें या ना रहें लेकिन जो नूर पैदा होगा वो हमारी रगों में दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। कि जब दिल से आंखों में अल्लाह का नूर दाखिल होता है फिर उसकी आंखों को कुछ और नज़र आता है, जब नस्बत अता होती है तो उसके ज़मीन आसमान बदल जाते हैं। ये ज़मीन आसमान तो काफिर भी देखता है लेकिन अल्लाह वालों के ज़मीन आसमान सूरज चांद और ही होते हैं। हज़रत ने लिखा कि जब बुज़ुर्गों के पास जाए तो ये नीयत ना करे कि हमारे इल्म में इजाफा होगा, मियाँ हमें कुछ मालूमात बढ़ेंगी, ऐसा नहीं, मालूमात तो अखबार पढ़ ले तो उसमें भी मिल जाती, बल्कि ये सोचे कि उनकी एहसानी कैफियत, उनका ईमान यकीन, उनका तकवा, उनका अल्लाह से डर, अल्लाह से उनकी मोहब्बत हमारे दिल में मुंतकिल हो रही है। ये सीखने का तरीका, किस्मती से हमारे ज़माने में ये तरीक़ा छोड़ दिया गया। अब लोग साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 खुतबे सुनते हैं लेकिन ज़िंदगी में तब भी नहीं सुने, चले गए समझे किसी और के लिए था, मैं तो पहले से ठीक हूँ, यानी जो आदमी समझेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सबसे बड़ी बीमारी यही है। बड़े बड़े अहलुल्लाह मशायख कहते हैं, यानी पूरी ज़िंदगी दावत का काम करके 50-50 साल 80 साल, कहते हैं मियाँ हमें तो अब तक नहीं समझ में आया, अभी कोशिश कर रहे हैं समझ में आया। तो इसमें अल्लाह के पास पहुंचने का रास्ता जो है वो आजिज़ी है, अकड़ मकड़ नाज उजुब उससे कुछ नहीं मिलता। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह एक रात इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मेहमान हुए, तो देखा कि आप सारी रात मुताला करते रहे, पढ़ते रहे, और कभी बैठ कर पढ़ते, फिर लेट कर गौर करते, फिर बैठ कर पढ़ते, फिर लेट कर सोच में रहते। जब सुबह हुई तो आपने फजर की नमाज वैसे ही पढ़ ली, मालूम हुआ कि सारी रात वजू से रहे और जागते रहे। तो लोगों ने इमाम साहब से पूछा कि कम सोने की वजह पूछी, फरमाने लगे कि मैं कैसे सो जाऊं, सब लोग इसलिए इत्मीनान से सो रहे हैं कि जब कोई मसला पेश आएगा तो हम इन इमाम के पास जाके मालूम कर लेंगे, अगर मैं भी सो गया तो उसमें दीन का नुकसान होगा। फरमाने लगे मैं भी सो गया तो दीन का नुकसान होगा। एक और वाकया है कि दिल्ली में एक गरीब तालिब इल्म था, बेचारे के पास पढ़ने के लिए रात में लालटेन जलाने के पैसे नहीं थे। दुकानदार के पास गया कि मैं रात को पूरी दुकान का पहरा दूंगा, मुझे थोड़ा सा तेल दे दीजिए बस, कि उसकी रोशनी में किताब पढ़ सकूं अपनी। दुकानदार बहुत खुश हुआ कि भाई थोड़े से पैसों में पूरे रात का पहरेदार मिल गया, और तालिब इल्म ने अल्लाह का शुक्र किया कि मेरे मुताले के लिए अल्लाह ने इतनी आसानी पैदा कर दी, तेल दे दिया। एक एक घूंट पे एक एक कतरे पे अल्लाह का शुक्र करने का। ये फरमाया गया कुरान शरीफ में कि बहुत कम लोग हैं जो शुक्र करते हैं, क़लील मिन इबादी अश्शुकूर, उसी चीज़ों का तो बहुत जिक्र आया, बहुत जिक्र आया शुक्र के मामले में, फरमाया कि बहुत कम लोग हैं जो शुक्र करते हैं। तो एक रात तालिब इल्म पढ़ने में मशगूल था कि बादशाह की सवारी गुजरी, बादशाह की सवारियाँ गुजरती हैं, बाजे गाजे ढोल तमाशे लंबे लंबे लश्कर जमाने के गुजरते, घंटों गुजरते रहते, तो लोगों का जम्मे गफीर, लोग पास पड़ोस से निकलकर बादशाह का जश्न देखने को बैठ गए और देखते रहे। एक साहब ने उस तालिब इल्म से आगे पूछा, वो बेचारा पढ़ रहा है कोने में, आगे पूछा क्या मियाँ बादशाह की सवारी चली गई? उसने कहा मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, बस एक शोर सा कुछ हुआ था, मालूम ही नहीं क्या हुआ, शोर सा हुआ था। तो भाई बेहतरीन पढ़ने वाले ये हैं कि जब पढ़ने का वक्त हो तो हर तरफ से अपने आप को काट कर बावजू तिबला रू अल्लाह के ध्यान में, मेरे पास इतना ही वक्त है, मैं आधी ज़िंदगी ऐसी गुजार दी, अब चंद घंटे रह गए। तो भाई एक आदमी जो है वो ज़िंदगी में एक दिन में आदमी हिसाब लगाए, एक घंटे में 60 मिनट और एक दिन में 1440 या इस तरह कुछ मिनट, और साल का हिसाब लगाए और फिर 60-70 साल का लगाए, तो मालूम होगा कि कोई चंद मिलियन मिनट लेकर आया है आदमी, बस ये कीमत। अब उसमें से देख ले कितने तो पहले ही जाया हो चुके, कितने सोने खाने आने जाने में जाया होते हैं, और फिर कुछ क्या रहता है, और फिर आखिरत की लंबी जिंदगी के लिए मैंने क्या तैयार किया है। तो आदमी को जो मौका मिल जाए बहुत गौर से और शौक से बैठे, और जो ज्यादा शौक से बैठेगा उसको फायदा हो जाएगा। अब हम इंशाल्लाह सीरत पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कुछ सबक पढ़ते हैं। देखिए सबक पढ़ना मकसद ही नहीं कि पूरी तारीख और सन और आदाद व शुमार बताए जाएं, बल्कि बात यह है कि जो कैफियत है और जो एहसानी बात है जो हमें अपने आप को बदलना है वो चीज़ पढ़ी जाएगी। तो हर आदमी समझे मेरे लिए पढ़ी जा रही है, मैं ऐसा हूँ कि नहीं भाई, दुनिया की ज़िंदगी इम्तहान का पर्चा है, और कुरान जो है वो किताब है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पर्चा हमें सिखाने को आए थे कि ऐसे करोगे तो पास हो जाओगे और ज़बरदस्त एक ग्रेड आएगा, तो हमारे लिए एक मिसाल बनकर आए थे। अनस रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहा तकरीबन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत ज्यादा मेरी खिदमत फरमाते थे, और कभी इस दरमियान में मुझसे उफ तक ना फरमाया, ना कभी तंग दिली और ना खुशी का कोई कलमा कहा। ये उनकी खिदमत में थे, कोई चीज़ मंगा ली, कोई चीज़ ला के दिया, बच्चे थे लड़के, जो काम मैंने कर लिया उस पर कभी ये नहीं पूछा कि क्यों किया, और जो काम नहीं किया उस पर कभी ये नहीं फरमाया कि क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, एक बकरी पकाने के लिए हुक्म फरमाया, सहाबा में से एक आदमी ने कहा उसका ज़िबह करना मेरे जिम्मे है, दूसरे ने कहा खाल निकालना मेरे जिम्मे है, तीसरे ने कहा कि पकाऊंगा मैं, लोगों ने बांट लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ियां जमा करना मेरे जिम्मे है, मैं लाऊंगा काट। लोगों ने अर्ज किया कि आपके बजाय हम लोग इस काम को अंजाम दे लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कोई खुसूसी इम्तियाज अपने लिए पसंद नहीं करता। अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी फकीर को उसकी गुर्बत की वजह से हकीर ना समझते थे। दरवाजे पे फकीर आ गया, भाई उसको कुछ दे दें जरूर दे दें, क्योंकि वो तो आखरत के जमाने का बादशाह है। आखिरत में क्या होगा कि बड़े बड़े लोग बादशाहन लाइन बना के फकीर को ढूंढ रहे होंगे कि अरे मैंने तुम्हें एक रोटी खिलाई थी, आज मेरी सिफारिश कर दो, आज मेरी बहुत मुश्किल में, तो रोजे क़यामत का बादशाह है, उसकी थोड़ी खिदमत हो जाए। अब उसको कभी हकीर नहीं समझना, ये तो एक इम्तहान के पर्चे के तौर पर आपके पास आया था फकीर, बाबा दे दो कोई अल्लाह के नाम, तो उसको कभी झिड़कना नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बड़े से बड़े बादशाह के सामने मरऊब न होते थे, और अल्लाह की नेमत को खा कितनी ही कम हो कदर की निगाह से देखते थे, किसी खाने में ऐब ना निकालते थे, किसी खाने में ऐब ना निकालते थे, खाना पुराना हो गया या नमक कम है या सालन कम है या ठंडा है, अब उसमें आदमी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हजारों हजार दिन से बड़े बड़े पकवान आदमी खा रहा है, अगर एक आध दिन कुछ कम ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लक अल्हम्द, कभी जबान से बोले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खसूसियत ये थी कि आप जब ख्वाब में होते थे, नींद सोते थे, तो आंखें बंद रहती थीं, लेकिन आपका दिल बेदार और याद इलाही में मशगूल रहता था। आंख बंद है, दिल अल्लाह का जिक्र करता, सोते वक्त सांस की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन खर्राटा जो एक मकरू आवाज है वो नहीं सुनाई देती। कभी अगर भूख का वक्त होता, भूख की शिद्दत और फाके के वक्त कमजोरी से बचने के लिए अपने पेट मुबारक पर पत्थर बांध लेते थे। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमाई तो कबूल ना फरमाया, आखरत को अपने लिए पसंद, चाहते तो वह पहाड़ के बराबर सोना उनके साथ चलता, ये मॉडल पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कोई सरगोशी करता तो यह बात है, तो आप सर मुबारक को उसके मुंह से जुदा न फरमाते जब तक वो खुद अपनी बात कहकर हटा न लेता। कोई आदमी आपका हाथ मुबारक पकड़ता तो आप उसके हाथ से अपना हाथ न छोड़ाते जब तक वो खुद हाथ को न छोड़ देता। इतना मसरूफ आदमी और बहुत सारे काम हैं दीन के, दावत के, और किसी ने हाथ पकड़ लिया तो अब आप नहीं छोड़ा रहे, जब वो छोड़ेगा तब छोड़ेगा। कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करता तो चेहरे मुबारक को उसकी तरफ से ना फेरते जब तक वो आदमी खुद अपने को ना फेर लेता। कोई हाजतमंद हाजिर होता तो जब तक वो खुद उठकर ना चला जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ना उठते। रात को किसी के पास तशरीफ ले जाते तो ऐसी आवाज से सलाम करते कि जागने वाला सुन लेता और सोने वाला ना जागता। रात को देर से आया, अभी दरवाजा जोर से पटकाओ, घंटी बजाए, ये घर में आकर चीख, ये इस तरह के आदाब नहीं है। खामोशी से आए, फला वक्त पर आएंगे, ठीक है भाई सब सो गए, तो आराम से आके आदमी कोई चोर हंगामा ना, या कोई रात को उठे तहज्जुद के लिए तो पूरे घर को परेशान नहीं करना है, आप करके पढ़ लिया, ये समझे कि मेरे घर वाले सारे अल्लाह के वली हैं, सब मुझसे 1 घंटा पहले पढ़ के जा चुके, अब मैं ही नालायक रह गया, अब चलो जल्दी से पढ़ो। हर चीज में कसूरवार अपने आप को ठहरवाना है, जहाँ किसी और को ठहराया आप वहाँ मसले मसाइल परेशानी झगड़े, क्योंकि वो बात ठीक नहीं। अल्लाह, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक घर में रहते घर के कामों में मसरूफ रहते, यानी घर के कामों में हाथ बटाते, खाली और बेकार हरगिज ना बैठते। अब घर में आ गए भाई हम तो मर्द हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। घर के काम अंजाम देने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर नहीं था। दूध दूह लेते, जानवरों को चारा डाल देते, कपड़े या डोल वगैरह में पेवन लगा लेते, अपना जूता खुद सी लेते, खादिम के साथ मिलकर आटा पिसवा लेते, बाजार से सौदा सल्फ ले आते, बाजार खुद तशरीफ ले जाते और सौदा कपड़े में बांध कर ले आते। इतनी सादगी, बाजार से सौदा कपड़े में बांध कर ले आते। तीन बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को बिल्कुल बचा रखा था, एक झगड़ा, दूसरा तकब्बुर और तीसरे गैर जरूरी यानी बेकार काम। लोगों को भी बचा रखा था, ना किसी की बुराई करते, ना आयब लगाते, ना कमजोरियों और छुपी हुई बातों के पीछे पड़ते, अपनी जबान मुबारक को महफूज रखते, सिर्फ वो बात फरमाते जिसमें सवाब की उम्मीद होती, कोई सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों में दुनिया की कोई वक़्त न थी। आप फरमाया करते, मुझे दुनिया से क्या सरोकार, दुनिया से वास्ता इतना ही है जितना कोई मुसाफिर रास्ते में थोड़ी देर किसी दरख्त के साए में दम ले ले, फिर अपनी राह ले ले और छोड़कर चल दे। उमर रदी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा चटाई पर इस हालत में लेटे हुए देखा कि आपके पहलू मुबारक में उसके निशानात पड़ गए थे। ये मंजर देखकर उनकी आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह, उन्होंने फरमाया, क्या बात है, अर्ज किया कि आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बुरगजीदा हैं, फिर भी आप चटाई पर इस हाल में लेटे हैं और किसरा और कैसर ऐश कर रहे हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने खत्ताब, तुम्हें क्या कुछ शक है? फिर फरमाया, ये लोग वो हैं जिनको दुनिया की जिंदगी के सारे मजे यही दे दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घराने के लिए दुआ फरमाते कि ऐ अल्लाह, आले मोहम्मद का रिस्क बकदर जरूरत हो। चुनांचा आपके घर वाले कभी 3 दिन मतवातिर पेट भरकर खाना ना खा सके, यहाँ तक के दुनिया से पर्दा फरमा दे। कभी कभी कई माह गुजर जाते, घर में चूल्हा ना जलता, सिर्फ खजूर और पानी पर गुजर बसर होती। आपकी जिरा एक यहूदी के पास रहन रखी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना ना था कि उसको छुड़वा सकते, यहाँ तक के इस हालत में आपकी वफात हो गई। और ये फ़क्र आपका इख्तियारी था, वरना रुए ज़मीन के सारे खजाने आप ही के लिए थे, रुए ज़मीन के सारे खजाने आप ही के लिए थे। ये दुनिया का एक निज़ाम है। हमारे आयो दोस्तों, बुजुर्गों और हमारी मुकद्दस बहनें, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं, उनमें से 70 से ज़्यादा सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, फिरौन का जिक्र आया। मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी हालत देखिए, उनके पास कुछ नहीं है, तो बोलने में मुश्किल हो रही है, और मूसा अलैहि सलाम के पास साल हा साल तक उनके घर में सिर्फ एक चोगा था, यानी एक कपड़े का लिबादा, उसी को पहनते, उसी को बिछाकर उसके सो जाते। फिरौन अपने महल में बैठा है, कंगन पहनकर बैठा है, उसके नीचे से नहरें बह रही हैं और चीजें हैं। तो ये तो एक नक्शा है, ये तो एक इम्तहान का पर्चा था दोनों के लिए दुनिया में। वो भी चले गए और वो भी चले गए, अब दोनों का नाम रह गया। अब देखो कि कोई अपने बच्चे का नाम मूसा तो जरूर रखता है, लेकिन फिरौन कोई नहीं रखता। तो कभी भी आदमी परेशान ना हो, जो अल्लाह ने दिया अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलक अशुक्र, अल्लाहुम्मा लक अल्हम्दुलक अशुक्र। दरूद शरीफ पढ़ने के कुछ फजाइल बयान किए जाएंगे ताकि हमें दरूद शरीफ पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। एक एक पे दस दस का वादा है। इरशाद फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई शख्स मुझ पर सलाम भेजता है, अल्लाह ताला मेरी रूह मुझ पर वापस कर देते हैं, यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब दे लेता हूँ। फरमाया सबसे ज्यादा क़यामत के रोज़ मेरे साथ उसको कुर्ब होगा, यानी वो आदमी सबसे नज़दीक होगा जो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता होगा। दरूद शरीफ। अल्लाह फरमाया कि जो मुसलमान मुझ पर दरूद पढ़ता है, फरिश्ता उसको लेकर मुझ पर पहुंचाता है और नाम लेकर कहता है कि फलां ऐसा ऐसा कहता है, यानी इस तरह दरूद भेजता है। दुर्रे मुख्तार किताब है, उसमें नकल किया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो शख्स दरूद पढ़े और वो कबूल हो जाए तो 80 साल के गुनाह उसके माफ हो जाए। फरमाया कि जो आदमी दरूद भेजे किसी किताब में, हमेशा फरिश्ते उस पर दरूद भेजते रहते हैं जब तक नाम किताब में रहेगा। जो कोई हर रोज 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, उसकी 100 हाजतें पूरी की जाएं, 30 दुनिया की बाकी आखरत की। सुबह शाम आदमी दरूद शरीफ पढ़े, दुआ से पहले, दुआ के बाद। उमर रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, ऊपर नहीं जाती जब तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ो। दरूद शरीफ कुछ अहादीस में आए हैं और बहुत उम्दा पाकीज़ा हैं। दरूद शरीफ़ की किताबें होती हैं, उनको जुमे के दिन ख़ास तौर से पढ़ लिया जाए। और बाज़ दरूद बुज़ुर्गों के तजुर्बात हैं, ये अच्छे अच्छे कलमात हैं, ये दुआएं हैं, वो भी पढ़ सकता है, उनके ख़वास हैं। एक दरूद दरूद तुनजीना है और उसके ख़वास में है कि ये वबाओं और बीमारियों से हिफाजत है और डिप्रेशन को दूर करता है और बहुत सारी आफात से तहफ़ुज़ के लिए है। तो इनको याद कर ले, इनका कार्ड आदमी ले ले कहीं से, कंप्यूटर में प्रिंट कर ले, घर में लगा लें, तो उनको पढ़ लें, 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन बहुत बरकात है। ये दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, उसका तर्जुमा पढ़ा जाएगा। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उसके कार्ड वगैरह भी मौजूद हैं, ले सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़बीलना बिहा जमी अल हाजात وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير। का तर्जुमा है कि ऐ अल्लाह रहमत कामिला नाजिल फरमाइए हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ऐसी रहमत कि नजात दीजिए आप हमको उसके सबब हर किस्म के हौल और आफतों से, और पूरा कर दीजिए आप हमारे लिए उसके वसीले से सब हाजतें, और पाक कर दीजिए आप हम सब को उसके सबब तमाम बुराइयों से, और बुलंद कर दीजिए आप हमारे लिए इसके सबब बड़े दर्जे, और पहुंचा दीजिए आप हमको उसके सबब हर किस्म की नहायतों में, नेकी के नहायतों में पहुंचा दीजिए हर किस्म की भलाइयों से, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी, बेशक आप हर चीज़ पर कुदरत रखते। मशाइख ने लिखा कि आफतों बलाओं से बचने के लिए ये 70 मरतबा रात में इसका विर्द किया जा सकता है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको दरूद शरीफ पढ़ने और दरूद शरीफ के फजाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए। हमारे भाई ने दरख्वास्त की थी कि मिसवाक के फजाइल कुछ मुख्तसर दोबारा अर्ज कर दिए जाएं ताकि हमें एक सुन्नत जिंदा करने का सवाब मिल जाए। नमाज तो आदमी पढ़ता ही है और एक साल में 1800-1825 नमाजें होती हैं। अगर मिसवाक के साथ नमाजें पढ़ लेगा तो एक साल में 70 साल की इबादत का सवाब मिल जाएगा। एक साल में 70 साल की इबादत का सवाब मिल गया, और उसमें वो 1 मिनट लगता है। यानी एक साल में जहाँ 1800 नमाजों का सवाब मिलना था, 1,27,000 नमाजों का सवाब मिल रहा है बैठे बैठे। मिसवाक के फायदे, उस पर मशायख ने किताबें लिखी हैं कि मिसवाक किया कीजिए, उससे गफलत मत कीजिए। मिसवाक के फायदे ये हैं कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है, और ये बताया गया कि उसका सवाब 70 गुना, कहीं पर बताया गया 99 गुना बहुत बढ़ जाता है नमाज का सवाब। और मिसवाक इस्तेमाल करना रिस्क में वसअत, रिस्क में रिस्क बढ़ता है आदमी का। मुंह की सफाई होती है, मसूड़े की मजबूती का बायस है। आप किसी डेंटिस्ट से ही पूछेंगे तो कहेगा मिसवाक जरूर कीजिए। बल्कि बाज जो है वो टूथ ब्रश वो मिसवाक की ही शक्ल में उस बनाए जाते हैं, वहीं से सीखा है कि भाई इस तरह बनाना है। दर्द सर कब बचाता है, सर की रगों के लिए मुफीद है, बलगम दूर करता है, दांतों की मजबूती, आदमी की आंखें तेज करता है, मैदा सही रखता है, बदन को ताकत पहुंचाता है, हाफजा बढ़ाता है। अब कोई कुरान याद कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है, मिसवाक करो। मस्जिद आ रहे हैं मिसवाक करो, बाज दफा कोई आ गए तो ऐसा ना हो कि मुंह से बू आ रही हो। ये नमाज वगैरह तो हो जाएगी, वो फतवा एक अलग चीज़ है, लेकिन दूसरे लोगों को तकलीफ होगी, फरिश्तों को तकलीफ होगी, क्योंकि मस्जिद जाने से पहले खास तौर से अल्लाह के दरबार में जा रहा हूँ, ज़बरदस्त मिसवाक करके आदमी आया। नेकियों को ज्यादा करता है, अकल को बढ़ाता है, फरिश्तों की खुशी का बायस है, चेहरे के मुनव्वर नूरानी हो जाने की वजह से फरिश्ते मुसाफा करते हैं। एक मिसाल है, फरिश्ते आकर हाथ मिलाकर जा रहे हैं, आदमी को पता भी नहीं चल रहा, फरिश्ते आकर मिलकर जा रहे हैं। अम्बिया कराम की दुआ का मुस्तहिक हो जाता है, शैतान को नाराज करने का सबब है। पुल सरात से बिजली की तरह गुजारने वाला है, नामा अमाल दाएं हाथ में मिलता है। कलमा शहादत मौत के वक्त याद दिलाता है, आखरत का टिकट, रूह निकलने को आसान करता है, कब्र में कुशादगी होती है, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं। फिर लिखा है कि जो आदमी मिसवाक करेगा उसको उस दिन मिसवाक ना करने वालों के बराबर लोगों का सवाब मिलता है। जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, दुनिया से पाक और साफ होकर निकलता है, फरिश्ते मौत के वक्त हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, मिसवाक के फवायद पर लोगों ने किताबें लिखी हैं, तो आदमी एक नरम अच्छी अपने मिजाज के मुताबिक मिसवाक ज़रूर रखे और मंगवाया करे। ना उसमें ज़्यादा खर्च होता है, ना उसमें कुछ वक्त लगता है, और फ़ायदे बहुत ज़्यादा बताएगा कि यहाँ पर फ़ायदे बताए जाएंगे, और बाद चीज़ें बार बार पढ़ी जाती हैं, इसलिए कि हमारे माशरे में हमारे महलों में उसी की ज़रूरत है। आदमी जो है वो गोश्त पोस्ट की चीज़ है, उसको बताया गया तुम्हारे इम्तहान का ये पर्चा है, और उसमें बार बार वही चीज़ें पेश आती हैं, इसलिए बात चीज़ें दोबारा दोहराई जाती हैं। मकसद है कि हमारी ज़िंदगी में आ जाए। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं हज़रत इकबाल साहब, उन्होंने औरतों के फ़ज़ाइल में अहादीस जमा की, फ़ज़ाइल उन्निसा, कि हम अपने घर वालों के, हमारे घर में अल्लाह ने अता फरमाए हैं उनकी बहुत कदर करने वाले बन जाए, ये भी बार बार पढ़ी जाती। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वसीयत मानो मेरी औरतों के हक़ में भलाई करने की। आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों में उस आदमी का ईमान ज़्यादा कामिल है जिसका अखलाक और बर्ताव सबके साथ अच्छा हो, और ख़ास कर बीवी के साथ जिसका रवैया लुत्फ और मोहब्बत का हो। बताया कि मुसलमानों में सबसे अच्छा आदमी। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों में ज़्यादा कामिल ईमान वाला वो है जिनके अखलाक बेहतर हैं, और तुम में अच्छे और खैर के ज़्यादा हामिल वो हैं जो बीवियों के हक़ में ज़्यादा अच्छे हैं। फरमाया कि जो औरत, उसका इस हाल में इंतकाल हुआ कि उसका शौहर उससे राज़ी था, तो वो जन्नत में दाखिल हो गई। शेख फरमाते हैं कि देखिए ख़वातीन के लिए जन्नत में जाना कितना आसान। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत का अपने घर में घर का काम करना जिहाद करने वालों के जिहाद के रुतबे को पहुंचता है, इतना सवाब मिलता है। मर्दों को फरमाया कि अपनी बीवी के घर के काम काज में मदद करने से तुम मर्दों को भी सदका का सवाब मिलता है। औरतों को आराम पहुंचाने की कितनी तरगीब दी गई। फरमाया कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे, रमज़ान के रोज़े रख लिया करे, अपनी आबरू की हिफाजत रखे, खावंद की शौहर की ताबेदारी करे, तो ऐसी औरत जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, यानी उसके लिए जन्नत के 8ों दरवाजे खोल दिए जाएंगे। शेख फरमाते हैं कि देखिए, सिर्फ फराइज की अदायगी ही कितनी कदर औरत के लिए फरमाई गई। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो औरत अपने शौहर की ताबेदार हो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं परिंदे हवा में, मछलियां दरिया में, और फरिश्ते आसमानों में, और जानवर जंगलों में। फरमाया कि जो खातून नेक हैं वो नेक मर्दों से पहले जन्नत में जाएंगी, मोमिनीन और मोमिनात में। फरमाया कि मोमिनात जन्नत में पहले जाएंगी, फिर उनके जब शौहर आएंगे तो ये अपने शौहरों के हवाले की जाएंगी, और उनके साथ ऐसे बच्चे होंगे जैसे बिखरे हुए मोती। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब फरमाते हैं, बहिश्ती जेवर में मजमून है, खवातीन को उन्होंने इरशाद फरमाया कि आप और कौन सी फजीलत चाहती हैं, जन्नत में भी मर्दों से पहले पहुंच गई, हाँ नेक बन जाना शर्त है और ये कोई मुश्किल नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मर्दों के लिए नबी थे, वैसे ही औरतों के लिए नबी थे। कुरान शरीफ में जैसे मर्दों के अहकाम हैं, खवातीन के अहकाम, दीन में जितनी मेहनत और शौक जज्बे से मर्दों ने हिस्सा लिया, खवातीन ने भी हिस्सा लिया। तो आखरत के बारे में दर्जा दोनों का यानी बराबर है, और कंपटीशन है कौन ज़्यादा अमल करता है, अल्लाह का वली बन गया, अल्लाह की वलिया बन गई। तो मर्दों को औरतों के सबके इम्तहान के पर्चे हैं, हुकूक की अदायगी है, दूसरों के लिए अच्छा बर्ताव है, और उससे बड़े बड़े दर्जे मिलते हैं। जैसे कहा गया और हदीस शरीफ में और ये सीरत की किताब में पढ़ा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक, कोई अल्लाह की याद थी, मखलूक पर रहम है, सादा मिजाज है, नरम है, माफ़ करने वाले हैं, और ऐसा एहसान सिखाते हैं कि जो तोड़े उससे जोड़ो, और जो जुल्म करे उसको माफ़ कर दो और उस पर एहसान करो। ये चीज़ें बार बार बताने का मकसद ये है कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, और तकवा का मैयार बढ़े, और सारे गुनाह छूट जाएं, और हर वक्त आदमी को अल्लाह का जिक्र नसीब हो जाए और अल्लाह का ध्यान मिल जाए। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि साइंसी तरक्की तो इतनी हो गई कि एक बाजार में आदमी जूस की बोतल खरीदे, उसके एक एक अज्जा की केमिस्ट्री और लिखा हुआ है कि इतने इतने मिलीग्राम इसके अंदर ये चीज़ है, इतनी तहकीक हुई। गाड़ी में 8-10 सीटें हैं, कोई एक सीट में बेल्ट ना लगाए तो लाइट जल जाती है कि फलां सीट पे बेल्ट नहीं लगी हुई, और ऐसे ऐसे नक्शे हैं कि आदमी अगर 1 मिनट भी ज़रा गाड़ी में गलत उड़ जाए तो ऊपर से आवाज़ आती है कि मियाँ 50 फीट वापस जाओ, इतनी तरक्की कर ली। अभी चांद पर उछलना कूदना आ गया, लेकिन ज़मीन पर इंसानों की तरह चलना नहीं आया, मसले अभी भी वहीं के वहीं हैं। दिल की दुनिया वीरान, ज़बान पे शिकायत, दिल में गफलत, आँखों पे पर्दे पड़े हुए, घरों में झगड़े हो गए। अब ये क्या हुआ, इजादात में बहुत निकल गए लेकिन अपनी दिल की दुनिया पे गौर नहीं किया, समुद्र में उतर गए, पहाड़ पे चढ़ गए, चांद पे चढ़ गए, लेकिन अपनी दिल की दुनिया को ठीक नहीं कर सके, ये मसला है इंसान का। तो इंसान की बर्बादी खुद इंसान के हाथों है, किसी और मखलूक के हाथ नहीं हो रही। तो अब उसमें जो है अमानत, दयानत, रहमदिली, खुदा तरसी, इसलिए दीन इस्लाम और इस्लाम की बातें रहमत है मुसलमानों के लिए भी और गैर मुसलमानों के लिए, हर एक के लिए रहमत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों जिन्नात सारे आलम के लिए रहमत है, हत्ता के जो है जो लोग ईमान नहीं लाए उन पर भी रहमत है कि आपकी मौजूदगी में कोई अजाब नाजिल नहीं हो, इतनी बड़ी रहमत है इस्लाम और मुसलमान। आज एक नया सबक पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह, इसको इल्म दीन का एक बाब जो सीख ले उसको इतना सवाब मिलता है गोया पूरी रात इबादत की, उस नियत से हम उसको सीख लें। इसमें कुछ वज़ू के फजाइल और जो दुआएं वज़ू में पढ़ी जाती हैं या पढ़ सकते हैं, वज़ू करना भी एक इबादत है, इसको तफसील से पढ़ा जाएगा। ये हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रऊफ़ सखरवी साहब की किताब है, अपना वज़ू दुरुस्त कीजिए, वज़ू दुरुस्त कीजिए। उस्मान रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने वज़ू किया, खूब अच्छी तरह वज़ू किया, तो उसके जिस्म से सारे गुनाह निकल जाएंगे, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाएंगे। इतनी बड़ी फजीलत की चीज़ कि एक वज़ू करने में सारे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, नाखूनों के अंदर से भी गुनाह माफ़ हो रहे हैं। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ दोनों की है, मुत्तफ़कुन अलैह, यानी इससे ज़्यादा सही, ये इतनी सही हदीस। मतलब ये है कि जो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक आदाब और सुन्नत के एहतमाम के साथ पाकीज़गी हासिल करने के लिए अच्छी तरह वजू करेगा, तो उससे न सिर्फ मैल कुचैल और नापाकी ही न दूर होगी बल्कि गुनाहों से भी पाक साफ हो जाएगा। जब उम्मती क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे तो वजू के असर से उनके चेहरे और हाथ पांव रोशन होंगे। जिसका वजू जितना मुकम्मल होगा ये नूरानियत उसी दर्जे की होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा ध्यान से वजू करें। वजू करना कोई मुश्किल नहीं है कि भाई जैसे तैसे हो गया, जल्दी नमाज खड़ी हो रही थी, जल्दी से दौड़ कर आए, ये तमाम करना चाहिए। भाई दोपहर से सोच रहा है कि भाई शाम का वजू होगा, अभी मगरिब का किया जाएगा, बहुत पहले से। वजू के बाद दुनिया की बात नहीं है, वजू के बाद तहियतुल वजू है, मस्जिद को जाना है, इबादत को तैयार हो गया ध्यान से। वजू के फ़राइज़ क्या हैं? एक मरतबा सारा मुंह धोना, चेहरे को धोना, और एक मरतबा दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, एक दफ़ा चौथाई सर का मसह करना, और एक मरतबा दोनों पांव टखनों समेत धोना। ये तो कम से कम है, ये फ़राइज़ हैं, ये इससे कम हो गया तो वजू होगा ही नहीं। अब वजू की सुन्नतें हैं, सुन्नत मौक्कदा 15 हैं। वजू की नियत करना, वजू की नियत करना, मैं वजू करने जा रहा हूँ अल्लाह की रजा के लिए, वजू की नियत। बिस्मिल्लाह कहना वजू के लिए, बिस्मिल्लाह कहना। अब ऐसी जगह है जहाँ पर यानी बाथरूम के अंदर है, वहाँ नापाकी भी है, नापाकी है, तो आदमी दिल में कह सकता है या बाहर आके किसी पाक जगह पर वजू कर ले, यानी ये बिस्मिल्लाह कहना ये भी एक सुन्नत है। दोनों हाथों को गट्टों तक धोना, मिसवाक करना, जैसे बताया गया कि नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाएगा। मिसवाक करना ये नमाज में ये सुन्नत है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, दाढ़ी का खिलाल करना मर्दों के लिए, हाथों को उंगलियों की तरफ से धोना, उंगलियों की तरफ से धोना, ना कि कोहनियों की तरफ से धोना, ऐसे नहीं धोना बल्कि उंगलियों की तरफ से धोना, हाथों की उंगलियों का खिलाल करना, हाथों की उंगलियों का खिलाल करना, ये भी वजू है। एक हाथ की पुश्त दूसरे हाथ की हथेली पर रखकर ऊपर के हाथ की उंगलियां नीचे की हाथ की उंगलियों में डालकर खींच लें, तो कहते हैं उंगलियों का खिलाल। पैर की उंगलियों का भी खिलाल करना, होता यह है कि उंगलियों के दरमियान जगह है, अब सर्दी है, वहाँ पानी नहीं पहुँचता, ऊपर से बह जाता है, अब हम समझे वजू हो गया, हुआ ही नहीं, तो वहाँ रगड़ रगड़ के मल मल के एक उंगली के ज़रिए से उसको आदमी मले, उसको कहते हैं खिलाल करना। तरीका यह है कि बाएं हाथ की छोटी उंगली से खिलाल करें कि दाएं पैर की छोटी उंगली से शुरू करें और बाएं पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म करें, थोड़ा सा उसको पानी से मलना। एक बार तमाम सर का मसह करना और कानों का मसह करना। हर वजू को 3 बार धोना, यानी एक बार तो फ़र्ज था, 3 बार धोना सुन्नत है। तरतीब से वजू करना जैसे बताया गया है, यानी पहले नियत करना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर दोनों हाथ धोना, फिर मिसवाक करना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मुंह धोना, दाढ़ी का खिलाल करना, हाथों का धोना, उंगलियों का खिलाल करना, सर का मसह करना, पैरों का धोना, फिर पैरों की उंगलियों का खिलाल करना, और पै दर पै वजू करना। यानी एक अभी हाथ धोकर अभी चले नहीं गए कि फ़ोन आ गया, आप हाथ तो धो लिया था मैंने उससे पहले, अब मुँह धो लूँ जाके, फिर फ़ोन आ गया तो पैर धो लूँ, पै दर पै भाई वजू कर रहा हूँ, अभी इबादत है, अभी फ़ोन बाद में देखा जाएगा। आज़ाए वजू को मल मल कर धोना, ख़ास तौर से सर्दियों के ज़माने में ख्याल रखें, क्योंकि खुश्की की वजह से जिस्म के कुछ हिस्से खुश्क रहने का अंदेशा है। भाई वजू में इतनी ताकीद क्यों? मुसलमान जो भी इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, वो वजू की ज़रूरत है। अगर वजू ही नहीं हुआ तो अब आगे इबादत क्या होगी? तो आगे जब घंटों खड़ा है अल्लाह के दरबार में हो तो वजू को भी ज़रा ऐसी तवज्जो से करें, और गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं, ये अलहदा एक इबादत है, अभी उसकी दुआएँ आएंगी। फिर इस तरह वजू के मुस्तहबात हैं, पाक और ऊँची जगह बैठ कर वजू करना, क़िबले की तरफ मुँह करके बैठना अगर मुमकिन हो, बाज़ दफ़ा घरों में साख्त ऐसी होती है कि आप क़िबले की तरफ बैठ नहीं सकते, जहाँ तक मुमकिन हो वजू में किसी और से मदद ना लेना, दाएं हाथ से कुल्ली करना, बाएं हाथ से नाक साफ करना। अब कोई बहने हैं, अब बच्ची है, अंगूठी छल्ले चूड़ियाँ वगैरह ऐसी हों कि उसमें आदमी के जिस्म तक, उसके जिल्द पर पानी पहुँचने में रुकावट ना बने, तो उनको हरकत देना कि वहां भी पानी पहुंच जाए। हर उजू को धोते वक्त बिस्मिल्लाह कलमा शहादत पढ़ना, इसको वक्त मिल गया शौक है तो ये भी एक वजू में मुस्तहब है कि धो रहा है और कलमा शहादत और बिस्मिल्लाह पढ़ता जा रहा है। फिर वजू के बाद और वजू में दुआएं पढ़ना। फिर वजू के मकरूहात हैं, पानी जरूरत से ज्यादा खर्च करना, यानी नल खोल दिया बहुत जोर के, इतनी कि यानी पड़ोस में भी आवाज जा रही है कि साहब वजू फरमा रहे। वजू बिनान से करना है और उसमें पानी का ख्याल रखना है, यानी अगर दरिया के किनारे भी कर रहा हो तो भी उतना ही पानी लें जितनी की जरूरत है पानी, और इस तरह बहुत कम खर्च भी ना करें कि उससे आपके धुले ही नहीं। वजू करते वक्त दुनिया की बात करना मकरूह है। पानी से 3 बार मसा कर लेना सर पर, ये मकरूह है। वजू के बाद हाथों से पानी को झटकना, ये भी मकरूह है। वजू जो है कोई बोझ नहीं है कि वजू कर लिया, वजू एक इबादत है, उसको उसकी शान के मुताबिक करना है। अब जो है हजरत ने दुआएं लिखी हैं कि वजू करते वक्त आदमी अल्लाह से कैसी कैसी मुनाजात और बातें कर सकता है। हाथ धोते वक्त फरमाते हैं सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा वजू में, और अगर मुमकिन है क़िबले की तरफ मुंह करके पाक जगह बैठा है, और हाथों को धोते वक्त ये दुआ पढ़िए। अब ये तर्जुमा है, ऐ अल्लाह मैं आपसे दीनी और दुनियावी बरकत मांगता हूँ और बदबख्ती और हलाकत से आपकी पनाह चाहता हूँ। अब उसके बाद कुल्ली करेगा, मिसवाक करेगा और मुंह को साफ करते वक्त ये दुआ पढ़िए, ऐ अल्लाह कुरान करीम की तिलावत करने में और अपने जिक्र और शुक्र और इबादत अच्छी तरह करने में मेरी मदद फरमाइए। वजू हो रहा है, अल्लाह ताला से बातें हो रही, नाक में पानी डालते वक्त ये दुआ पढ़ रहा है। अब मुंह से अगर नहीं पढ़ पा रहा है या बाथरूम में है जहाँ पर जोर से पढ़ने में मुनासिब नहीं है तो दिल में मांगता रहे। दिल ऐसी चीज है कि 24 घंटा अल्लाह से मांगते रहो, उस पर कोई पाबंदी नहीं। नाक में पानी डालते वक्त दुआ पढ़े, ऐ अल्लाह मुझको जन्नत की खुशबू सुंघाइए और दोजख की बदबू से बचाइए। नाक में पानी डालते वक्त ख्याल आया कि जन्नत की खुशबू चाहिए और जहन्नम से की बदबू से मुझे बचाइए। जब चेहरा धोते रहे, और चेहरा धोने में पूरा हजरत ने लिखा है कि अच्छी तरह यानी पेशानी के बालों से आदमी की ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक सब जगह पानी बह जाए, कोई जगह सूखी ना रहे। चेहरा धोते वक्त ये दुआ पढ़िए कि ऐ अल्लाह जिस दिन बहुत सारे चेहरे रोशन होंगे और बहुत से स्याह हो जाएंगे क़यामत में, क्योंकि दुनिया में हम कब आए, कब पैदा हुए, कितने दिन रहेंगे, हमारा कद कितना होगा, हम कैसे नजर आएंगे, इन चीज़ों में कोई इख्तियार नहीं है, इसीलिए ना इन चीज़ों में कोई चीज़, ये तो एक इम्तहान का पर्चा है। अलबत्ता आखरत में आपको इख्तियार है कि कैसा चेहरा चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, ये इख्तियार है। बाज लोग नेक अमल वाले, उनके चेहरे नूरानी हो जाएंगे, चांद की तरह रोशन, और बाज लोग अल्लाह बचाए उनके अमाल ठीक नहीं थे तो चेहरे स्याह हो जाएंगे, अल्लाह बचाए। तो दुआ करें कि या अल्लाह क़यामत में जिस दिन बहुत से चेहरे रोशन हो जाएंगे और बहुत से स्याह हो जाएंगे उस दिन मेरा चेहरा रोशन फरमा दीजिए। वजू कर रहा है, अल्लाह से बातें कर रहा है। उसके बाद अपना हाथ धोया उसने, और हाथ धोते वक्त ये दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरा नाम अमाल मेरे दाएं हाथ में दीजिए और मेरा हिसाब आसान लीजिए। बायां हाथ धोते वक्त दुआ पढ़ी कि ऐ अल्लाह मेरा नाम अमाल बाएं हाथ में मत दीजिए और ना पीठ के पीछे से दीजिए। सर का मसा करते वक्त ये दुआ पढ़िए, ऐ अल्लाह जिस रोज आपके अर्श के साए के अलावा और कोई साया ना होगा उस रोज मुझे अर्श का साया दीजिए। कान का मसा करते वक्त ये दुआ पढ़िए कि ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में से बनाइए जो बातें सुनकर नेक बातों पर अमल करते हैं। गर्दन का मसा करते वक्त ये दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह मेरी गर्दन जहन्नम से आज़ाद फरमा दीजिए। फिर पैर धोए, और पैर धोते वक्त ये दुआ पढ़िए, ऐ अल्लाह जिस रोज पुल सरात में से बहुत से पैर फिसलेंगे मेरा पांव साबित कदम रहे। बायां पैर धोते वक्त ये पढ़िए, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमाइए, मेरी कोशिश कबूल फरमाइए, मेरी तिजारत को तरक्की अता फरमाइए। अब वजू खत्म हुआ, पूरी एक इबादत हो रही है माशाल्लाह, जैसे कोई आदमी हरम शरीफ में पहुंच गया हो और इबादत हो रही हो, इमाम काबा के साथ पढ़ रहा हो। वह दीन में ऐसा है, छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान और तवज्जो से इतनी जान पड़ जाती है कि आपने सुना दो रिकत नमाज कोई बुजुर्ग ने पढ़ी हो, उनको इतने इतने लाख का सवाब मिल गया। कैफियत की बात, कैफियत की बात। वजू खत्म होने पर आसमान की तरफ मुंह करके कलमा शहादत पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अब क्या हुआ, जन्नत के आठों दरवाजे खुल जाते। फिर ये दुआ पढ़ें। अब ये दुआ अरबी में है, याद कर लें तो आसान है। हदीस शरीफ की दुआ है, अल्लाहुम्म जअलनी मिनत तवाबीन व जअलनी मिनल मुतफहिरीन। अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वालों और पाक रहने वालों में शामिल फरमाइए। अल्लाहुम्म जअलनी मिनत तवाबीन व जअलनी मिनल मुतफहिरीन। वजू के दरमियान किसी जगह ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमाइए, मेरे लिए मेरे घर में वसअत फरमाइए और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमाइए। दुनिया की चीज़ भी छोड़ी नहीं, मेरे गुनाह माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत बड़ा सा घर दीजिए और रिस्क में बरकत दीजिए। दिन में 5 मरतबा, साल में 1825 मरतबा दुआ मांग रहा है आदमी, एक दफ़ा भी कबूल हो गई, सारी ज़िंदगी का झगड़ा ख़त्म हो गया। होता है कि आदमी में खूब कोशिश कर रहा है, मशवरे कर रहा है, दरख्वास्तें डाल रहा है, गिन रहा है हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, बस अल्लाह से मांग रहा था वो नहीं मांगा। अल्लाहुम्मा ग़फिर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। वजू तमाम हुआ तो आदमी अब जो है मास्क की और चीज़ों की तैयारी करे। इसमें एक दो मसाइल हैं जो हज़रत ने लिखे हैं और ज़रूरी मसाइल हैं। आज़ाए वज़ू में किसी चीज़ पर कोई और चीज़ लगी हुई हो, मसलन नाखूनों पर नाखून पॉलिश हो, बहनों के लिए मसला लिखा है कि किसी के नाखून पॉलिश लगी हुई है किसी बच्ची में, या मर्दों के कोई दाढ़ी के बालों पर खिजाब की तह जम गई हो और ये दोनों खुश्क हों, तो ये नाखूनों की पॉलिश और बालों से खजाब की जमी हुई तह को दूर करना ज़रूरी है। बग़ैर छुड़ाए सिर्फ ऊपर से पानी बहा लेने से वजू नहीं होगा। क्योंकि मसाइल पेश आते हैं तो आदमी ये पढ़े बहिश्ती जेवर में या किसी आलमा बाजी से मसला पूछ ले। इस चीज़ें हम जिंदगी भर नमाज़ें पढ़ते हैं, वजू करते हैं और कोई अहम शरई मसला नहीं मालूम, अब पता चला इतने साल के अब जो है मुश्किल हो गए। इसमें लिखा है हज़रत ने कि रोटी कोई पकाए, रोटी पकाने वाले होते हैं और रोटी पकाने वालियां बहनें, अगर नाखूनों में आटा लगा रह जाए और खुश्क हो जाए तो वज़ू के वक्त उसको छुड़ाना भी ज़रूरी है। जब बग़ैर छुड़ाए वज़ू कर लिया, उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं हुआ। हाँ ये कि इतना सख्त हो गया है कि अब बार बार कोशिश से नहीं छुड़ रहा तो आटे या उसमें ऐसा चिमट गया कि कोशिश के बावजूद ना छूटे और छुड़ाना दुश्वार हो गया, तो अब जो है वजू हो जाए, लेकिन बेख्याली ना हो, कोशिश करें। तो भाई ये एक बाब हो गया, ये वजू का, इल्मे दीन का एक बाब। हजरत ने लिखा कि वजू में पानी गिराने में बहुत एहतियात रखना चाहिए। आजकल वजू खानों में यानी टैप टोटियां नल लगे होते हैं, तो देखने में आता है कि लोग नल खोल कर बैठ जाते हैं, यहाँ वजू कर रहे हैं, पानी बहता रहता है और भाई उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाते। याद रखिए कि पानी अल्लाह की बहुत कीमती नेमत है, उसको बेकार नाली में बहा देना जायज़ नहीं। अब मुँह धोने के लिए हाथों का प्याला बनाकर पानी भर लिया तो अंगूठे के इशारे से नल को बंद कर दें। पानी नहीं, वजू करके आ रहे थे, पता चला इतना पूरी बाल्टी बहा दी और उसमें जो है यानी उसमें सवाब और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और कोई मुश्किल पड़ गई तो खुद भी बच्चों को भी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि दिन में 5 मरतबा पूरे घर को ज़रूरत पेश आती है, तो इसको भी इबादत बना दिया जाए बेहतरीन तरीके से, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे। और अल्लाह ताला हम सबको इसके करने की तौफीक अता फरमाए। अब एक सबक पढ़ा जाएगा जिससे कि कहीं हमारी नेकियाँ महफूज रहें, और ये सबक बार बार पढ़ा जाता है और बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ज़बान की हिफाजत, ज़बान की हिफाजत। भाई हमें लाखों करोड़ों नेकियां आ रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ज़बान की हरकत से ज़ाया भी हो जाए। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़बान देखने में तो गोश्त की एक बोटी है, लेकिन हर चीज़ पर उसे तसर्रुफ़ हासिल है। जिस किस्म के अल्फाज ज़बान से निकलते हैं उसके मुताबिक कैफियात दिल में आने लगती हैं। दिल की दुरुस्तगी का इन्हिसार ज़बान की दुरुस्तगी पर है। حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کھینچ کر فرماتے، یعنی صحابی ہیں، اتنا بڑا مقام ہے، خلیفہ ہیں اور بہت بڑا ان کا مقام ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا ان کو، وہ اپنی زبان کھینچ کر فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بے شمار امور میں الجھا رکھا۔ لکھا ہے کہ بعض باتیں ہیں جن میں آفت ہے اور مشکل، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، غیر ضروری بات کا ترک کر دینا بھی عین اسلام ہے۔ اب کسی سے غیر ضروری باتیں کہ میاں تم روزے سے ہو کہ نہیں، تم کہاں سے آ رہے ہو میاں، کیا کر رہے ہو، قسم کی چیزیں، تو جواب دینے والا غلط بیانی کر سکتا ہے اور بات فضول سی ہوئی۔ لقمان حکیم نے فرمایا کہ خاموشی کا دوسرا نام دانائی ہے۔ بزرگ کا قول ہے کہ جو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ تیرا بیڑا اللہ غرق کرے، تیرا ستیہ ناش کرے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بہت بے ادبی کی بات ہے، زبان کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اس طرح ناشائستہ لطیفے سنانا یہ بھی غلط بات ہے۔ اس طرح دوسرے کو بے وقوف سمجھنا، تکبر، درندگی پر اتر آنا، کبھی کسی کی بات مان کر نہیں دینا، یہ بھی حرام ہے۔ بلا ضرورت کسی مسلمان کو رنجیدہ رکھنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ مال کے بارے میں جھگڑا کھڑا کرنا یہ تو بہت بری چیز ہے، اور بد زبانی یا فحش کلامی، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے، اور اسی طرح لعنت ملامت کرنا۔ فرمایا کہ ہنسی ہنسی میں دلوں میں کدورت بیٹھ جاتی ہے، بہت زیادہ کوئی مذاق میں کسی کو کوئی بات کہہ دینا، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، نہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، کس کو معلوم کہ وہ آدمی اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہو۔ ذرا جھوٹا وعدہ کبھی نہ کریں، جھوٹی باتیں بنانا، جھوٹی قسمیں کھانا کبیرہ گناہ ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنے سے فرشتے میلوں دور بھاگتے ہیں۔ اور اس میں غیبت ہے، جس میں قرآن، جس کو قرآن شریف میں بتایا گیا کہ ایسا ہے گویا اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ غیبت کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ، اشارے، آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کو مثلا لنگڑا ظاہر کرنے کے لیے خود لنگڑا کر چلنے لگے۔ وہی غیبت کیا چیز غیبت ہے اور نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ جو چیز دوسرے بھائی کو بری لگتی ہے وہ غیبت ہے، اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو ہم کہیں کیوں؟ تو اس لیے جب دو آدمی ملیں تو تیسرے آدمی کا ذکر نہ کرنا۔ اچھی بات کی، تھوڑی دیر کے بعد کوئی مگر کر دیا، پھر بری بات کر لی، تو تیسرے آدمی کا ذکر نہیں کرنا، اور جہاں پر تیسرے چوتھے آدمی کا ذکر آ رہا ہو وہاں سے اٹھ جائے، تو اپنی نیکیاں بچا لیں۔ زبان وہی ہے اور اس سے ہیرے، موتی، جواہرات، لاکھوں کروڑوں کمائے جا سکتے ہیں، اور وہی زبان پھسل جائے تو کنکر، پتھر اور مٹی جمع کرے گی، اور وہی زبان پھسل گئی تو آفتیں، مصیبتیں، جھوٹ، غیبت، بہتان، مذاق اڑانا، گویا کہ ہیرے موتی پھینک کر آگ میں چلے گئے۔ وہ زبان کا صحیح استعمال ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، منٹ منٹ میں اللہ تعالیٰ سے برکتیں لی جائیں۔ جو آدمی قل ہو اللہ واحد ایک مرتبہ پڑھے اس پر برکت نازل کی جاتی ہے، جو دو مرتبہ پڑھے اس کے گھر پر برکت ہوتی ہے، جو تین مرتبہ پڑھے اس کے اور اس کے پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے، جو دس مرتبہ پڑھے تو جنت میں ایک محل بن جاتا ہے، تین مرتبہ پڑھے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، جس کی روزانہ کی تلاوت ٹوٹ گئی ہو تو وہ سفر کرتے ہوئے قل ھو اللہ احد کی ایک تسبیح پڑھ لے، اتنا ثواب ملے گا اس کو، اتنا ثواب ملے گا۔ مولانا ارسلان صاحب نے کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے کہ روایت لکھی کہ اللہ تعالیٰ اگر امت کو عذاب کرتے تو دو چیزیں نہیں دیتے، ایک رمضان کا مہینہ اور دوسرے سورہ اخلاص۔ اللہ تعالیٰ عذاب کرتے تو دو چیزیں نہیں دیتے، رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص۔ اتنے فضائل ہیں، آدمی اپنی زبان کو بری دوسری چیزوں میں کیوں الجھائے؟ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ صبح اور سبحان اللہ شام کو کہے تو یہ اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا اس نے 100 حج کیے۔ فرض حج کو تو جانا ہوگا لیکن نفلی حج کا ثواب ملا۔ جو آدمی الحمدللہ صبح اور الحمدللہ شام کو کہے تو ایسا ہے کہ اس نے 100 گھوڑے صدقہ کر دیے، یا یہ فرمایا کہ اس نے 100 مرتبہ اللہ کے راستے میں کیا ہو۔ جو لا الہ الا اللہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھے تو ایسا ہے کہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ भाई 2-2 मिनट लगते हैं, और नेकियों के पहाड़ आदमी ले जा सकता है। फरमाया जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी, और जो 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाएंगी, और इस तस्बीह के हर मरतबा पढ़ने पर जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा। जो आदमी कमज़ोरी की वजह से न रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ सकता है, न बुजदिली की वजह से अल्लाह के रास्ते में जा सकता है, और इतना बखील है कि माल भी खर्च नहीं कर सकता, तो भाई वो ये तस्बीह कसरत से पढ़ता रहे तो उसको भी वो कुछ ना कुछ अल्लाह के ख़जाने से बहुत मिल जाएगा। पहाड़ों के बराबर सोना खर्च करने से ज़्यादा उसको सवाब मिल जाएगा। तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़े, जो 100 मरतबा पढ़ लेगा दिन में, और इसमें 2 मिनट लगते हैं, उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन होगा क़यामत के लिए। भाई ये गफलत हम दूर करें और अल्लाह से हम ताल्लुक़ क़ायम करें, और उसके लिए बुज़ुर्गों के वाक़यात हिकायात चीज़ें पढ़ी जाती हैं कि भाई ये करने से ये मिलेगा और गुनाह करने से ये नुकसान होगा। अल्लाह का दस्तूर है कि बंदों को माफ़ फरमा के खुश होते हैं, लेकिन इंसान अपने हाथों से अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ियाँ मारता फिरता है। इसलिए बुज़ुर्ग फरमाते थे कि इंसान जितनी मेहनत से जहन्नम कमाता है उससे आधी मेहनत करे तो उसको जन्नत मिल सकती है। जितनी मेहनत से जहन्नम की तरफ भागा जा रहा है अगर उससे आधी मेहनत कर ले तो उसको जन्नत मिल सकती है, मगर इंसान गुनाह की खातिर बहुत पापड़ बेलता है। एक गुनाह के लिए दूसरा गुनाह करना पड़ता है, एक गुनाह किया छुपाने के लिए झूठ बोला, फिर झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला, इस तरह गुनाहों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अल्लाह के सामने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और तौबा कर लेना अल्लाह को बहुत महबूब है। तौबा करने वाला अल्लाह सुभानहू व तआला का दोस्त हो जाता है। किताब है गुनाहों का कफ़ारा और मग़फ़िरत के असबाब, में से कुछ अहादीस पढ़कर दुआ होगी। शैतान ने अपने रब से कहा कि आपकी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक बनी आदम में रूह दौड़ रही है मैं उनको मुसलसल गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने उससे फरमाया कि मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं भी उनको मुसलसल माफ़ करता रहूँगा। ऐसा इतनी रहमत। अगली रिवायत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मुझसे बढ़कर कौन सखी है। कहते हैं मुझसे बढ़कर कौन सखी है, बंदों की उनकी ख्वाबगाहों में हिफाजत करता हूँ इस तरह कि उन्होंने मेरी नाफरमानी नहीं की, और मेरा करम है कि तौबा करने वालों की तौबा कबूल करता हूँ हत्ता कि वो तौबा ही करता रहता है। वो कौन है जिसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मैंने उसके लिए दरवाज़ा ना खोला हो। तो इमाम काबा अरबी में मांगते रहते हैं कि कौन है जिसने आपसे सवाल किया और आपने ना दिया हो, कौन है जिसने मुझसे मांगा हो और मैंने उसको ना दिया, क्या मैं बखील हूँ बस बंदा मुझको बुखल की तरफ मंसूब करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई कौन है जिसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मैंने ना खोला हो, ऐसी मिसाल है कुछ बहुत देने वाले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये अहादीस कुत्ती हैं जो पहले बाब में मुसन्निफ़ ने जमा की हैं, यानी हदीस हैं कि अल्लाह ताला इस तरह फरमाते हैं, और उन सब की अरबी की रवायतें और उन सब की असनाद लिखी हुई हैं, जिनको देखना हो बाद में देख सकते हैं। फरमाते हैं जिसने एक नेकी की उसको 10 गुना अजर मिलेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा दूंगा, जिसने एक बुराई की तो उसका बदला उसकी मिसल है या उसको भी बख्श दूंगा, और जिसने ज़मीन भरकर गुनाह किए फिर मुझसे इस हाल में आखरत में मिला कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराता था तो मैं पूरी ज़मीन के बकदर मग़फ़िरत उसके लिए वाजिब कर दूंगा, और जो एक बालिश्त भरकर मेरे पास हुआ करीब तो मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो एक हाथ मेरे करीब होता है तो मैं 2 हाथ उसके करीब हो जाता हूँ, और जो चल कर मेरे पास आता है मेरी रहमत दौड़ कर उसके पास जाती है। इतने मेहरबान अल्लाह ताला, इतने मेहरबान, इतने मेहरबान। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रात के बुखार से मोमिन की तमाम खताओं को माफ़ फरमा देते हैं। इब्ने मसूद रदी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, ताज्जुब है मोमिन पर और बीमारी से उसकी घबराहट पर। अगर उसको मालूम हो जाता कि बीमारी में क्या कुछ उसके लिए इनाम और सवाब है तो जिंदगी भर बीमार रहना पसंद करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया, फिर आप हंस दिए। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बिना पर आपने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया और फिर आप हंस पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उन दो फरिश्तों को देखकर ताज्जुब हुआ जो बंदे को उसकी नमाज पढ़ने की जगह में तलाश कर रहे थे, बस उसको ना पाया। फिर दोनों फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में लौट गए, अर्ज करने लगे कि ऐ हमारे रब, आपका फलां बंदा दिन रात में जो अमल किया करता था हम उसको लिख लिया करते थे, अब हम देखते हैं कि आपने बीमारी की रस्सी में उसको बांध दिया, अब वो नमाज की जगह में नजर नहीं आया फरिश्तों को, तो फरिश्ते ढूंढ रहे हैं उसको। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा रात दिन में जो भी अमल किया करता था वो सब लिख दो, अभी भी लिखो, और उसमें से कुछ कम ना करना, जो अमल करता था बराबर उसका अजर मिलेगा, और जो मैंने उसको रोक दिया है कि वो बीमार हो गया उसका अजर सवाब मेरे ऊपर, पहले से ज्यादा सवाब मिल रहा, अमल का भी सवाब मिल रहा है, बीमार होने का भी मिल रहा है। अल्लाह ताला बहुत देने वाले हैं, अल्लाह के दरबार में देने में कोई कमी नहीं है, मांगने वाला होना चाहिए। सुबह शाम अल्लाह के ख़जाने खुले हुए हैं और दुनिया आखरत की हर चीज़ अल्लाह के पास है, सारे मसाइल का हल उनके पास है, और 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है, और हमारे फ़ायदे को हमसे ज़्यादा जानते हैं। आदमी अपना फ़ायदा क्या जानेगा, इतना छोटा सा दिमाग है। अल्लाह से मांगे, अल्लाह आप मुझे झोली दे दीजिए, सबसे अच्छा सवाल करना भी मुझे सिखा दीजिए, मुझे तो मालूम ही नहीं क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जितना आजदी और मिस्कीनी से अल्लाह की बारगाह में मांगेगा, और इसी के लिए बताई जाती है कि दुआएं अपनी ज़बान में ही मांगे, वहीं पर आदमी को दिल का खुशू और ध्यान नसीब होगा, जब अपनी ज़बान में अपनी दुआ मांगेगा, अपनी सारी मजबूरियों, मुश्किलात, परेशानियों, घर की चीज़ों, बच्चों की परेशानियों, सबको आदमी दुआ बना दे, अल्लाह ये परेशानी भी दूर कर दीजिए, अल्लाह ये परेशानी भी दूर कर दीजिए, हर चीज़ को आदमी दुआ बना दे, तो वो आदमी कामयाब हो जाएगा और अल्लाह के ख़जाने से बहुत मिलेगा। हम तौबा करें, अल्लाह से मांगें और सुबह शाम अल्लाह के जिक्र में रहें, नेकी फैलाने का हमको शौक़ हो जाए और नेकियां अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ हो जाए, मिलता बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, ये मकसद है। अल्लाह ताला हमें आपको सबको नसीब फरमा दे। दरूद शरीफ पढ़कर इंशाल्लाह दुआ कर लें, अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए और कहने सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व आलिही व सल्लम तस्लीमा। रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے احسان سے اپنی رحمت کاملہ سے یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پوشیدہ ظاہر جو بھول گئے جو یاد ہیں یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دیجئے یا اللہ ہم جس وقت سے بالغ ہوئے یا اللہ ہمارے سارے اعمال ساری باتیں آپ جانتے ہیں فرشتوں نے لکھ رکھی ہیں یا اللہ نامہ اعمال میں موجود ہے یا اللہ اس میں جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئیں یا اللہ بھول چوک ہو گئی غلطی سے ہو گئے جان بوجھ کے ہو گئے یا اللہ اپنی رحمت سے سب معاف فرما دیجئے یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کوئی بندہ بندی اتنے گناہ کر چکا ہو کہ زمین آسمان بھر جائے مگر سچی نیت سے شرمندگی سے آئے تو آپ بھی اتنی مغفرت فرماتے ہیں کہ سب معاف ہو جاتے ہیں یا اللہ پہاڑ بھر گناہ آپ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب کر ختم ہو جاتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے یا اللہ پوری امت کو بخش دیجئے یا اللہ امت کی پریشانی کو خوشی سے بدل دیجئے یا اللہ امت کے خوف کو امن سے بدل دیجئے یا اللہ امت کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے یا اللہ پوری امت کو ایمان صحت عافیت یا اللہ مغفرت و آسان رزق اور درجات اور ذکر و شکر کی توفیق دے دیجئے یا اللہ توبہ کی توفیق دے دیجئے یا اللہ جتنے فرائض ہم سے ٹوٹ گئے اور چھوٹ گئے یا اللہ ان سب کو پورا کرنے کی توفیق دے دیجئے یا اللہ یا رحمان یا کریم یا اللہ ہم نے بندوں کے جتنے حقوق توڑے یا اللہ کسی کو نقصان پہنچایا ہو کسی کی غیبت کی ہو کسی کا دل دکھایا ہو کسی پر ظلم کیا ہو، یا اللہ ہماری توبہ ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے، ان بندے بندیوں سے بھی معافی دلوا دیجئے، یا اللہ ان کے حقوق اپنی طرف سے دے دیجئے، ان سب کو بخش دیجئے، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، یا اللہ آپ نے صحت طاقت دی، دل دماغ دیے، نیکیوں کی توفیق دی، یا اللہ نیکیوں کے پہاڑ دینے کا وعدہ فرمایا، لیکن یا اللہ ہم نے ٹھیک سے عمل نہیں کیا، یا اللہ ہم نے وقت ضائع کر دیا، یا اللہ ہماری نیت بھی ٹھیک نہیں رہی، یا اللہ جو کام کرنے تھے ہم سے چھوٹ گئے، جو نہیں کرنے تھے وہ ہو گئے، یا اللہ جو کچھ بن پڑا آپ کے دربار میں لے کے حاضر ہوئے، یا اللہ اپنی رحمت سے، احسان سے، کرم سے، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ آپ کی جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، یا اللہ کعبہ شریف پر، مسجدوں میں، اللہ والوں کی مجالس میں، یا اللہ رمضان میں، حج میں، عمرے میں، یا اللہ رات کی آخری پہر میں، جمعے کی راتوں میں، یا اللہ وہ ساری رحمتیں اپنے فضل سے، کرم سے، احسان سے ہمیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ جن خیر اور نیکی کی باتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا اللہ وہ سب ہمیں بھی عطا فرما دیں، یا اللہ جن چیزوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، یا اللہ ہمیں بھی پناہ دے دیجیے، یا اللہ ہمارے حاضرین حضرات، ہمارے بھائیوں بہنوں ماؤں کے دلوں میں جتنی نیک خواہشات ہیں، یا اللہ ان سب کو غیب سے پورا فرما دیجیے، یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا اللہ صبر، شکر، احسان، یا اللہ سب نیک بندوں کی اچھی صفات ہمیں عطا فرما دیجیے، یا اللہ اولیاء صدیقین کا مقام عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، یا اللہ جو مرحومین ہمارے خاندان میں، بزرگوں میں، امت میں جو گزر گئے، یا اللہ ان کو معافی عطا فرما کے جنت الفردوس عطا فرمائیے، یا اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیے، یا اللہ قیامت میں پل صراط میں بجلی کی تیزی سے گزار دیجئے، یا اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائیے، یا اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرمائیے، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ ٹھکانہ عطا فرمائیے، یا اللہ دنیا آخرت کی تمام پریشانیوں کے لیے، یا اللہ آپ ہی ہم کو کافی ہیں، یا اللہ ہمیں سکھا دیجئے، یا اللہ وہ صفات جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، یا اللہ وہ باتیں بھی سکھا دیجئے، یا اللہ اس کا طریقہ سلیقہ بھی دے دیجئے، یا اللہ اس پر استقامت بھی دے دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعي مقبول وسعي مشكور وعمل صالحا متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم